शांति। अभी समय प्रमाण हम सभी जानते हैं कि हम सभी को अभी क्या करना है। अभी हम सबको वापस जाना है कहीं रहना है, महाराष्ट्र जाने की बात नहीं है, कहाँ जाना है? परमधाम घर जाना है ना, बाप के साथ वापस घर जाना है। बाबा हमको लेने के लिए आया है ना, तो वापस जाना ही रहना है, जाना पड़ेगा या नहीं? हम कहेंगे हम तो यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, भले सब जाए हम तो यहीं रहेंगे। बाबा ने कहा कैसे भी करके मैं आप सबको लेके जाऊंगा, प्यार से नहीं चलोगे तो क्या करके ले जाएगा, मारपीट के भी ले जाएगा ना, है ना, लेके जाएगा, पर जरूर लेके जाएगा ना। तो आप कैसे चलना है हमको, प्यार से चलना है। तो जो हमारा बाबा है वो क्या है, उसके साथ जाना, एक तो उसको जाना उसके साथ जाना होता है, एक होता है उसके पीछे पीछे जाना होता है बराती बन के, है ना, एक साथी बन के जाना होता है और एक बराती बन के, और पीछे पीछे उसके पीछे घराती भी होते हैं, घराती में जबरदस्ती पीछे पड़ने वाले नहीं, तो वो भी जाने वाले। आप कौन सी पार्टी में जाने वाले, साथी बराती या घराती, है ना, हमें तो जाना पड़े ना। तो वो जो बाबा है, शिव बाबा है, वो कैसा है, उसको कितना साइलेंस पावर है, उसके अंदर कितनी साइलेंस पावर है, क्या उसको कभी कोई संकल्प चलता है, क्या उसको कभी विचार चलता है कोई भी, क्या ख्याल है, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, उसको कभी विचार चलते हैं क्या? शिव बाबा तो ऐसा सोचता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, उसको जीरो थॉट्स चलते हैं, उसको कोई विचार संकल्प चलता ही नहीं। ड्रामानुसार जब वो उसका आना होता है संगम पर ब्रह्मा के तन में, और बाद में दोनों बाप दादा जब दादी के तन में आते हैं, तो ड्रामानुसार जो बोलना होता है, ड्रामानुसार अपने आप नहीं, उतना ही बाबा बोलते हैं। तो बाबा सोचते हैं क्या, बाबा सोचते नहीं। तो हमारा शिव बाबा ऐसा सोचता है, और हम क्या करते हैं, सारा दिन सोचते ही रहते हैं ना, नहीं? और उसमें सिर्फ ज्यादा कैसे सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं ना, नहीं? बेकार बातें, नेगेटिव बातें तो सोचते थे, किंतु नेगेटिव अभी कम हो गए, किंतु व्यर्थ तो बहुत सोचते हैं ना? और अभी हमको अगर अपने बाबा को देखें, है ना, शिव बाबा को देखें, तो शिव बाबा कौन है, शिव बाबा परम सत्य है ना, नहीं सत्य माना, सत्य ज्ञान माना, क्या सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ। हम आधा क्लब से 63 जन्मों से पिछले 2500 साल से क्या क्या कर रहे थे, असत्य में जी रहे थे, है ना। असत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य है जो सदा है, एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, ना? इसका जन्म और मरण नहीं होता है, सत्य अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, राइट। और अभी हम और ये जो देहभान है, सत्य है, सत्य है, असत्य है ना, देहभान का जन्म होता है, देह का जब मरण भी होता है ना, देह अभिमान माना रोल कॉन्शियस, कर्म बंधन, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, ना, ये जो डिफरेंट रोल्स है ना समाज में, ये जो है हमारे देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, हमारे जो संबंधी हैं डिफरेंट, है ना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, है ना, ये संपर्क है। प्लीज अपने मोबाइल स्विच लाइट साइलेंस मोड में डाल दीजिए, बीच में आवाज ना आए, साइलेंस की बात कर, साइलेंस अनुभव नहीं होगी तो आपको ना? तो देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ का, पदार्थों का भान, देह के जो वैभव है ना, चीजें हैं, मकान है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है ना, आपकी अपनी पर्सनल चीजें हैं, उनका भान, और देह के, देह भान के संबंध स्वभाव संस्कार का भान, देह भान माना जो देह भान है हमारा बॉडी कॉन्शियस, उससे उत्पन्न क्या, कौन सा हमारा, कौन सा स्वभाव पैदा, नेचर क्या है देह भान की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये देह भान का स्वभाव है। ये पांच विकार नेचुरल है देह भान के साथ आते हैं। जैसे आग के पास जाओ तो फर्नेस के पास जाओ तो गर्मी लगती है ना, ऐसे देह भान आते ही काम विकार में ना देह की दृष्टि पैदा होती है, मेल फीमेल की दृष्टि पैदा होती है। देह भान आते ही क्रोध आता है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं करता है, मैंने इनको कहा ऐसा क्यों नहीं करता है ना। देह भान आते ही इनसिक्योरिटी पैदा होती है तो संग्रह करने की वृत्ति पैदा होती है, लोभ लोभ वृत्ति पैदा होती है। देह भान आते ही कुछ लोगों से लगाव पैदा होता है, जो अपने होते हैं ना बहुत क्लोज उनके प्रति मोह पैदा होता है। और देह भान आते ही अहंकार पैदा होता है, देह के साथ जो चीजें आपने इकट्ठी की ना लोभ और मोह के कारण उनका अहंकार पैदा होता है। तो ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है, आधा कलश से हमारी नेचुरल नेचर बनी हुई थी। और देहभान के स्वभाव, ये स्वभाव है संस्कार, देहभान के जो स्वभाव हैं पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जब हम अभ्यास में लाते हैं तो इससे हमारी एनर्जी जलती है। एनर्जी माना क्या, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा जलती है। आत्मिक ऊर्जा क्या है हमारी, एक तो ज्ञान सत्य की समझ, पवित्रता शांति सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम अतीन्द्रिय सुख आनंद और आठों शक्तियां, ये आत्मा की ऊर्जा है जो आत्मा के अंदर हमेशा साथ रहती है। और आत्मा इस सात ऊर्जाओं से शरीर को चलाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये सात ऊर्जाएं जो है इससे ही हमारी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाएं चलती हैं। इन सात ऊर्जाओं से ही आत्मा अपनी तीन सूक्ष्म शक्तियों बुद्धि मन और संस्कार को चलाती है। और आत्मा इन बुद्धि मन और संस्कार तीन सूक्ष्म शक्तियों के साथ पूरे शरीर के आठों अंगों को कंट्रोल करती है, है ना। तो ये जो सात एनर्जी है आत्मा के पास, तो ये जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की के वश होकर के कोई कर्म करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान खत्म हो जाता है, सत्य की समझ खत्म हो जाती है, हम अपने को देह भान हमारे अंदर और बढ़ जाता है, देह अभिमान और ज्यादा बढ़ जाता है, क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है ना, सॉरी देह के संबंध संपर्क और ज्यादा गहराई से बुद्धि में आके चिपक जाते हैं, देह के पदार्थ और ज्यादा जरूरी लगने लगते हैं और देह भान के स्वभाव संस्कार और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, है ना। तो ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जो क्रोध आने से, लोभ आने से, मोह आने से, अहंकार आने से, ये पांच विकार हमारे जितना उसको अभ्यास में लाते जाएंगे उतना हमारे अंदर आलस्य पैदा होता जाता है ना? तो हमारा सत्य की समझ खत्म, पवित्रता खत्म शांति की बजाय शांति, है ना, और सच्चे प्रेम की बजाय स्वार्थ का प्रेम और क्रोध पैदा होता है, और लोग जो अपना जो अतीन्द्रिय सुख की बजाय चिंता पैदा होती है ना, आनंद की बजाय दुख पैदा, उदासी आ जाती है, शक्ति की बजाय कमजोरी महसूस होने लगती है, हम सत्य को परख नहीं पाते, यथार्थ निर्णय ले नहीं पाते, राई का पहाड़ बना देते हैं, विस्तार को समेटने की शक्ति रहती नहीं, सारी जगह अपनी मन बुद्धि को फैला देते हैं, सहन होता नहीं, समाना होता नहीं, सामना होता नहीं, किसी की मदद कर नहीं पाते, सहयोग कर नहीं पाते, है ना। तो ऐसा होता नहीं होता, तो विचारों की स्पीड बढ़ती है और हम हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, क्या आ जाता है, आलस्य। तो ये आलस्य संस्कार है किसका, देहभान का संस्कार। ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन कौन सा है, आलस्य, अलबेलापन संस्कार है, दूसरों के अवगुण देखना दोष दर्शन, सामने वाले में 95 गुण हैं किंतु हमको क्या दिखाई देते हैं, देहभान वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, वो पांच अवगुण दिखाई देते हैं, है ना। माता पिता को अपने बच्चों में क्या दिखाई देता है, पत्नी को अपने पति में क्या दिखाई देता है, पति को अपनी पत्नी में क्या दिखाई देता है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज में क्या दिखाई देता है, एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयर में क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है ना, अवगुण दिखाई, दोष दर्शन होता है ना, बदलने की भावना, संशय हर बात में शक लगता है, अनुमान लगाने की आदत पड़ जाती है, चिंता भय हो जाता है, आदत पड़ जाती है, जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन होने लगता है और ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है, ये आदत बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर आने से क्या होता है, हमारे विचारों की स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे हम आप बात करें टाइम, नॉर्मली हमारे 15 विचार एक मिनट में चलते हैं लगभग, जिसे हम बीटा रिदम भी कहते हैं। अगर ब्रेन का फ्रीक्वेंसी करें ना, टेस्ट करें ब्रेन पे, जैसे 8 का ECG करते हैं ना, और ब्रेन में एक EEG होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोड लगाकर उसे रिकॉर्ड करें ब्रेन की एक्टिविटी को, तो हमारी नॉर्मली जो ब्रेन की एक्टिविटी बीटा रिदम होती है 13 से 18 पर सेकंड, एक सेकंड में 13 से 18 बार ऐसे ऐसे करते हैं, और उसे अगर विचारों में कन्वर्ट करें तो लगभग इतने ही विचार एक मिनट में आते हैं, 13 से 18 विचार एक मिनट में। ऐसा कह सकते हैं हम कि लगभग आम आदमी 15 विचार एक मिनट में करता है। किंतु अगर जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर हो, जल्दीबाजी हो, तो विचार लगभग 20 के आसपास, 18 से 20 विचार एक मिनट में आने लगते हैं। चिंता करते हैं तो लगभग 27 विचार एक मिनट में आने लगते हैं, और जब चिड़चिड़ापन आने लगता है तो हमारे 30 के लगभग विचार, 30 से 32 तक विचार आने लगते हैं, और जब गुस्सा आता है तो 35 विचार आने लगते हैं। काम विकार आता है और दूसरे विकार आता है तो उससे और ज्यादा विकार, और ज्यादा जोर से गुस्सा आता है तो 40 विचार भी हो जाते हैं, और 45 विचार से अधिक विचार एक मिनट में आने लगे तो उसको हम कहते हैं पागल। क्या कहते हैं? मैड, या तो डिप्रेशन हो जाता है या साइकोसिस, अंदर की इंसाइट खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ इंसाइट, समझ खत्म हो जाती है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, समझ नहीं आता, हम जो सोचते हैं वो दिखाई देने लगता है, जो आवाजें हमारे मन में चल रही होती हैं विचार से, वो सुनाई देने लगते हैं, इसको हलोसिनेशंस कहते हैं। मतलब आदमी इस दुनिया से कट जाता है, सत्य सत्य कट जाता है, समझ रहे? तो ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमको उस तरफ ले जाते हैं, विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है ना? तो बीटा रिदम के बजाय बीटा प्लस और सुपर बीटा रिदम, और उसके बाद मैडनेस। आज देख रहे हैं आप लोग कितना डिप्रेशन फैल रहा है समाज में ना, स्पेशली यंग लोगों को, बूढ़े को भी हो रहा है, और कितना साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया कितना बढ़ता जा रहा है ना? सुनते होंगे आप लोग सभी। तो आज की हालत ये है, ये आज के विकार, आज के संस्कार जो देहभान से उत्पन्न है, देह अभिमान से उत्पन्न है, देह के संबंध संपर्क के भान से, देखे पदार्थों के भान से, देवान के स्वभाव संस्कार के भान से पैदा हुए, तो ये हमें कहां ले जा रहे हैं? पागलपन की तरफ, है ना? बहुत तेज, इतना दिमाग तेज चल रहा है आदमी का, बात मत पूछो। जब हम टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, तो एक सेकंड में 20 फ्रेम बदलते हैं, और जब कोई पिक्चर देख रहे होते हैं या कोई सीन ऐसा देख रहे होते हैं तो उस समय 30-40 फ्रेम भी एक सेकंड में बदलते हैं, और 40 से ज्यादा तेज फ्रेम बदलते हैं तो हम उस सीन के साथ चिपक जाते हैं, क्या अब क्या हो, अब क्या हो, अब ऐसे ऐसे, जैसे ना उसके साथ हम यूं नहीं देखते बैठ के, हम यूं बैठ के देखते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होगा। इसको कहते हैं स्पेशल इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल इफेक्ट, है ना? फिल्म वाले इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल इफेक्ट, है ना? या मर्डर के सीन होते, दूसरे सीन होते हैं, ऐसे सस्पेंस के सीन होते हैं, वो इसमें ऐसा दिखाई देता है। तो विचार एकदम, हमें एकदम पागलपन, उससे हम चिपक जाते हैं, अगली बार जब उसका सीरियल का एपिसोड आएगा और ज्यादा दोबारा उसकी वेट करते हैं, वो अब क्या हो, अब क्या हो, अब देखें, अब खोलते हैं, टाइम से पहले उसको खोलने के लिए तैयार रहते थे नहीं? तो ये हमारी हालत इतनी तेज हो चुकी, इतनी फ्रीक्वेंसी थॉट्स बढ़ चुकी है, और जाना हमको कहां है, कहां जाना है? क्योंकि जितनी टेलीविजन, ये टेलीविजन, मोबाइल और ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट है ना, जो ना, क्या बोलते हैं उसको, गूगल, गूगल बाबा है ना, ये हमको क्या कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी का बहुत तेज लेकर के जा रहे हैं, बहुत फास्ट लेकर के जा रहे हैं, और हमको जाना है परमधाम। परमधाम की, परमधाम में विचार है क्या? इस दुनिया में विचार है, बोल भी है, प्रकृति के पांचों तत्व है, आवाज की दुनिया है, सूक्ष्म वतन संकल्पों की दुनिया है, शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, सिर्फ शुद्ध संकल्प है, और परमधाम में एक विचार भी नहीं है। सूक्ष्म वतन में 1 से 3 विचार है, तो 1 से कम विचार वाली दुनिया कौन सी है? परमधाम। 1 से कम विचार, 1 से विचार कितने कम होते हैं? 0.9 भी हो सकते हैं, 0.8 भी हो सकता है, मतलब एक ही विचार, बस एक विचार, या एक से भी कम, 0। परमात्मा जो है, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी? 40-45। आम आदमी की परिभाषा कितनी फ्रीक्वेंसी है? 30 से 40, या तो हर समय गुस्से में रहता है, या तो चिड़चिड़ापन रहता है, या गुस्सा रहता है, या जल्दी चिंता तो सबको रहती है ना, आम आदमी को भी रहती है ना, और आम आदमी चिड़चिड़े में, आजकल चिड़चिड़े में चिड़चिड़ापन रहता है ना, और गुस्सा करता है और पांच विकारों से ग्रसित रहता है। इसी कारण से आज समाज में ऐसी हालत हो रही है, सब लोग दुखी हैं और ये बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तमो प्रधानता माया और ज्यादा, तमो प्रधान रावण और ज्यादा, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है क्योंकि अंत का समय ना, तो वो भी अपना रूप दिखा रही है। हम बाबा के बच्चे अभी देखो लोग इस कारण से क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, धर्म सत्ता धर्म गुरुओं के पास भाग रहे हैं, कोई विपासना कर रहा है एकदम साइलेंस में कोठड़ी में बैठ के 15-15 दिन चुप होकर बैठना पड़ता है ना, कोशिश करते हैं कि हम चुप रहें साइलेंस में जाएं, है ना, कोई वहां शांति मिल रही है क्या? हठ योग से, हठ के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, शवासन के द्वारा अपनी क्रियाओं के द्वारा मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है मन शांत? दमन करने से अमन कभी होता है क्या? अगर कोई गवर्नमेंट गोली चला दे, किसी प्रदर्शन हो रहा हो किसानों का या और कोई उस पर गोली चलाए तो क्या होगा? शांत हो जाएगा प्रदर्शन, शांत हो जाएगा, और ज्यादा शांत हो जाएगा ना, नहीं? तो शांत नहीं है, दमन से क्या होता है, और ज्यादा ज्वालामुखी फटता है जोर से ना, और ज्यादा विस्फोट होते हैं ना, तो दमन नहीं। तो आज जो है धर्मगुरु के पास जाओ, राज्य सत्ता के पास क्या हालत है? गवर्नमेंट से कुछ इसका सोल्यूशन लो तो उनके पास सोल्यूशन है क्या? है? विज्ञान की सत्ता के पास जाओ तो बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, तकलीफें कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो विज्ञान की सत्ता के पास सोल्यूशन है? प्लेन्स बना के, रॉकेट बना के, चांद पे जाके मकान बना के रहेंगे क्या? मंगल पे जाके रहेंगे क्या? ऑक्सीजन का प्लांट ऊपर जाके लगाएंगे क्या? यहां पर तो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, वहां कैसे ऑक्सीजन बनाएंगे? तो बता हालत मतलब जो है इतनी खराब होती जा रही है कि तीनों सत्ताएं भी हलचल में, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, विज्ञान की सत्ता। प्रकृति के द्वारा कार्य करती ना, प्रकृति कार्य कर रही है क्या? हमारे कंट्रोल में है क्या? आज तक साइंस इतनी डेवलप हो गई किंतु हमें नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला, पता है क्या? नहीं पता लगता। तो अभी हमें क्या करना है? अब एक ही ईश्वरीय सत्ता है, कौन सी सत्ता हमारे पास, कौन सी सत्ता है? ईश्वरीय सत्ता है जिसके द्वारा अब हमको क्या लाना है? पावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी जीरो है। अगर हम उस जीरो से अपना संबंध संपर्क बना लें, सरल संबंध उसके साथ बना लें और उसके कहे के अनुसार, अर्थात उसकी श्रीमत क्या है? ये बाबा की मुरली जो आपने सुनी आज, रोज हम सुनते हैं, ये बाबा की मुरली ही श्रीमत है। इसी में श्रीमत है, इसमें शिक्षा है, सावधानियां है और फरमान है, डायरेक्शन है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो क्या होगा? तो हमारी संकल्पों की स्पीड कम होती जाएगी और वो साइलेंस पावर हमारे अंदर आ जाएगी, पावर ऑफ साइलेंस। अब शांति और अशांति होती क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि किस विधि से हमारे जीवन में शांति की शक्ति कैसे पैदा होगी, वो पैदा करेंगे। तो पहले हम समझते हैं शांति क्या चीज है, अशांति क्या चीज है। अभी जो मैंने बात की आपको, एक मिनट में 30 विचार, 35 विचार, 40 विचार आ रहे हैं, इसको कहते हैं अशांति। अंदर थॉट ट्रैफिक टू मच बढ़ गया है ना, क्योस हो गया अंदर, इतना ज्यादा विचारों की तेजी है हम सो भी नहीं पाते। आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई समाज में? दो समस्याएं, एक डिप्रेशन और दूसरा नींद ना आना। लोग गोली खा के सोते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं किंतु उनको नींद नहीं आती है, इनकी गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, फिर दो गोली खाते हैं, फिर तीन खाते हैं, फिर चार खाते हैं, काफी लोग 10-10 गोली नींद की गोली खाएंगे तो भी नींद नहीं आती। ये समस्या बढ़ती जा रही है दिन पर। तो अभी हम ये समस्या जो बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे? कारण है, स्पीड बहुत बढ़ गई, थॉट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इन थॉट स्पीड को हम कैसे घटाएं? शांति क्या है? 90% विचार हमारे कहां से आते हैं? पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं। पास्ट में, भूतकाल में, हमें बचपन से लेकर के अभी तक जो भी हमारी विचारों को और हमारी भावनाओं को चोट पहुंची है, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। वो भावनाएं जो बचपन में हमें, इसे कहते हैं 4 से 11 साल की उम्र, बहुत कच्ची उम्र होती है, और जो कुछ बच्चे की पालना की जाती है उसका असर उसी रंग में बच्चा सारी उम्र रहता है, उसी रंग से सारी दुनिया को दिखता है। कहते हैं बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ घटना हो जाती है तो क्या होता है, बच्चा सारी उम्र ठीक नहीं हो पाता है। तो वो जो घटनाएं होती हैं जिस जीवन को बदल देती है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड चित्त में चली जाती है और उसकी नजर से उसी मोड में, इमोशनल मोड में आदमी रहता है सारी उम्र। तो पास की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से ही हमें हार्ट की बीमारी होती है, उसी से डायबिटीज होती है, उसी से ब्लड प्रेशर होता है, उसी से माइग्रेन होता है, उसी से सब बीमारियां आएंगी, जड़ वहीं शुरू होती है। मन की बीमारियां भी, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, ऑब्सेशन, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो वो समय जो है हमारे अंदर, वो पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स वो हमारे पास्ट में रहते हैं और 90% विचार हमारे वहीं से आते हैं। और भविष्य की इनसिक्योरिटीज, भविष्य में क्या होगा, पास्ट का चिंतन और भविष्य की चिंता, 90% विचार हमारे वहां से आते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपको 30 विचार आ रहे हैं तो 30 विचार जो कहां से आ रहे हैं, 30 में से 90% माना 27 विचार कहां से आ रहे हैं, पास के चिंतन से और भविष्य की चिंता से। राजयोग क्या करता है, जो परमात्मा से हम राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, उससे हम पास के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स को हील कर लेते हैं, समझ रहे हैं, हील माना वो भर जाते हैं, घाव भर जाते हैं, जो चोटें पहुंची हैं मन में और भावनाओं को वो भर जाती हैं। कैसे भर जाती हैं, ABCD है ना, ज्ञान क्या है, बाबा का ज्ञान क्या है, सत्य की समझ क्या है, ए फॉर आत्मा, मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। हम सब कौन है, देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु। ये समझ आ गई, पहले हम क्या थे, आधा क्लब से क्या समझते थे, मैं देह हूं, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह वाहन के स्वभाव संस्कार, इसी को ही जी रहे थे, इसमें ही दिन रात जी रहे थे, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, और इवन रात में भी सपने भी किसके ले रहे थे, इसी के ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, क्या समझते हैं, नींद आ रही किसी किसी को, तो हम इसी के सपने ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। और अब जब बाबा ने आके समझ देने, बच्चे तुम तो देह नहीं हो, तुम तो देह तो पांच तत्वों का बना पुतला है, इसको चलाने वाली तुम एनर्जी हो, तुम तो अशरीरी आत्मा हो, तुम परमधाम से अशरीरी आई थी, बिना देह के आई थी, और अब जाना कैसे है, कैसे जाना है, देह को साथ लेके जाना है, देह के संबंध संपर्क को साथ लेके जाना है, साथ में 1000 रुपए लेके जाने है ना, 500 रुपए तो लेके अलाउड है ना, नहीं 100 रुपए का, 100 रुपए तो ले जाएंगे नहीं रास्ते में, ये पानी वानी पीना पड़े रास्ते में, नहीं नहीं अलाउड है क्या, नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, देह यहीं रह जाएगी, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार भी यहीं रह जाएंगे, काम क्रोध लोभ लेके जा सकते हैं ऊपर, आलस्य अलबेलापन लेके जा सकते हैं ऊपर, चिंता भय ऊपर लेके जा सकते हैं, शक अनुमान ले जा सकते हैं, जल्दीबाजी ईर्ष्यादेश ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, तो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो अब ये समझ आई कि हम कौन है, हम आत्मा है, और हमारे जो संबंध संपर्क, पूरा संबंध है ना, वो परमात्मा के साथ है, बी माना बाबा और सी माना कनेक्शन माना संबंध, हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक उसने क्या किया है, अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है, अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है, और अभी भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और भविष्य में भी बजाती रहेगी। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्या है, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और क्या है, स्क्रिप्ट राइटर भी है ना, स्टोरी लिखते हैं ना, है ना, और डायलॉग राइटर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है ना, और क्या है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, हिसाब के अनुसार नहीं, हिसाब किताब के अनुसार, किताब भी है साथ में ना, हिसाब की किताब भी है, उन कर्मों के अनुसार हर आत्मा को अभी तक उसने 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी तक कुछ भी गलत डायरेक्शन नहीं हुए, किसने मुझे दुख दिया, धोखा दिया, गाली दी, इंसल्ट की, सुख दिया, बड़ाई की, महिमा की, तो क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ है। भले उसने मुझे गाली दी है, इंसल्ट किया, धोखा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने धोखा दिया हुआ है, मैंने गाली दी हुई है, मैंने इंसल्ट की, मैंने दुख दिया हुआ है, इसलिए उसने मुझे इस नाम में दुख दिया। कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है बताओ? अगर किसी से मैंने हिसाब किताब क्या है, अगर किसी से 100 साल पहले मैंने 10 रुपए उधार लिया तो 100 साल के बाद कितना बन गया वो, उसका ब्याज क्या हुआ, इस किताब कितना है? मेरा दोस्त था, उससे 10 रुपए मैंने पिछले जन्म में उधार लिया 100 साल पहले, वापिस नहीं दे पाया, इस जन्म में क्या बनेगा मेरे पास आके? मेरा या तो मेरा माता पिता पर कोई बनेगा, या तो भाई बहन बनेगा, या तो बेटा या बेटी बनेगा, या पति पत्नी बनेगा, या बिजनेस पार्टनर बनेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए तो उसको वापस करना पड़ेगा, और ब्याज कितना लगेगा, हिसाब किताब कितना लगेगा? एक बार हमने 100 साल का ब्याज लगाया था, सिंपल ब्याज कितना बना? 4,18,35,040 रुपए बना, 10 रुपए का ब्याज, है ना? सोचो अगर आपने किसी को दो गाली दी थी 100 साल पहले, इस जन्म में आपका पत्नी बन के आएगा, या पति बन के आएगा, या भाई या बहन बन के, या बेटा बन के, बेटी बन के, कितनी गाली देगा आपको? कितनी गाली देगा, कितनी बार गाली देगा? और आपको सहनी पड़ेगी, नहीं सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी ना। किसी की इंसल्ट की होगी तो क्या होगा, इस जन्म में कितनी बार होगा? तो ये है कर्मों का हिसाब किताब, समझ गए? किसी तो कुछ नहीं, किसी ने गाली दी, इंसल्ट किया, धोखा दिया, तो क्या किया, गलत किया क्या उसने? गलत किया, बोलो, गलत किया क्या? इसलिए कहते हैं जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, इसलिए फुल स्टॉप। हील हो गया, नहीं हो गया? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, अगर आपका पति आपको मारता है तो इसका मतलब क्या है, आपने पिछले जन्म में उसको मारा हुआ है, भले इतना ऐसा उंगली से ऐसे मारा होगा, थोड़ा सा यूं किया होगा, है ना? तो अभी भले उसने 10 थप्पड़ ऐसे जोर जोर से मारे ब्याज के साथ, आपने यूं मारा था, अभी वो जोर जोर से कितनी बार मारे, पूरा हाथ से नहीं, मुक्के से नहीं, तो कितना ब्याज हो गया ना? तो जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? और अभी क्या हो रहा है? और एक एक बात मैं यहां बता दूं, जब हम योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं सच्चाई से, विधि से, बाबा की बताई विधि से याद करते हैं, तो हमारा विकर्म भसम हो जाते, पाप कर्म भसम का मतलब क्या मतलब है? हिसाब तो देना पड़ता है, किताब भसम हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? किताब भसम हो जाता है, हिसाब देना, 10 रुपए जो लिया था वो देना ही पड़ता है, 4,18,35,040 रुपए देना पड़ता है, सुना? वो 4,18,35,040 रुपए माफ हो जाता है और 10 रुपए देना पड़ता है। तो क्या हुआ, सोली से कांटा हो गया, नहीं हो गया? तो ये है राजयोग का फायदा, अगर विधि पूर्वक करो तो। अगर आधा किया तो कितना माफ होगा? 2,09,00,000 रुपए माफ होगा, ठीक है, है ना? बाकी 35,000 का 18,00,000 वो 18,000 वो भी देना पड़ेगा, नहीं? तो इसलिए 100% बाबा ने जो बताया उस विधि से करना पड़ेगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अभी क्या हो रहा है, अभी तो बाबा मुझे समझ आ गए, मैं अपने को आत्मा समझिए, बिंदी आत्मा समझ के, और परम धाम घर में बिंदी, जो आज का वरदान था, बिंदी बाप से कम माइंड, अपने विक्रम भसम करो, इससे मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूं, सो बीज रूप बन के बाप के साथ वापस निकल जाएंगे। और भविष्य में क्या होने वाला है, गारंटी है, क्या होने वाला है, हम फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बन करके बाप के साथ वापस घर जाएंगे, और वापस कहां आएंगे, सत्युग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, गारंटी है कि नहीं है? तो ये जो होता ना, ये जो हमने किया ना, इससे हमारा पास्ट हील हो गया, इससे हमारा पास्ट हील होता है। जितना इसलिए सत्य की समझ को बार बार रिवाइज करते हैं। ये मुरली क्या है, मुरली में क्या होता है, आज की मुरली देखो क्या होता है, चार ही तो बातें होती हैं, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध और ड्रामा, ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान, कर्मों की फिलोसफी, यही तो बाबा समझाता है भिन्न भिन्न तरह से, रमणीक तरह की साखी बुद्धि में, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से बाबा समझाता है, 0 से 360 डिग्री एंगल तक समझाता, ताकि हर बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाए, समझ जाए बच्चा, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कभी स्कूल ना भी गया हो और बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको भी समझ आ जाए और अनपढ़ को भी समझ आ जाए, हिंदी वाले को समझ में आ जाए, इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाए, तेलुगु वाले को भी, मराठी वाले को, सबको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। तो बाबा उस एंगल से हमें मुरली में समझाते हैं एक बात। तो ये जो है ना बाबा के द्वारा, तो 90% थॉट्स हमारे क्या हो गए, हील हो गए, 27 खत्म हो गए, अब कितने बचे, 3। कितने बचे, 3। इसको कहते हैं शांति। शांति किसे कहते हैं, अगर 3 ही विचार आ रहे हैं, ABC, आत्मा, बाबा और संबंध। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और बाबा से मेरे कौन कौन संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, मुख्य 9 संबंध ना, उसी में मैं उसी के अंदर मैं समाया रहूं, किसी देहधारी की याद ना आए, मुझे माँ का साथ चाहिए, माँ का अनुभव चाहिए, तो बाबा को माँ बना लूं, बाबा को माँ के रूप में यूज करूं, मुझे बाप चाहिए तो बाबा को बाप के रूप में यूज करूं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मुझे टीचर चाहिए तो वो भी शिव बाबा को यूज करूं, सतगुरु चाहिए शिव बाबा को यूज करूं, बड़ा भाई या बड़ी बहन चाहिए तो भी शिव बाबा को यूज करूं, है ना, दोस्त चाहिए तो शिव बाबा को यूज करूं, साजन चाहिए किसको यूज करूं, शिव बाबा को साजन बनाऊं, उसके साथ वो रिश्ता निभाऊं, और सर्जन डॉक्टर चाहिए, सर्जन चाहिए तो किसको बुलाऊं, उसको बुलाऊं वो ठीक करेगा, और बच्चा चाहिए तो बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पोता पोती चाहिए तो क्या किसको बुलाएं, उसको ही हम महसूस करें, ठीक है, हर संबंध उसके इसके अंदर हम रहें तो क्या हो गया, जितना ये अभ्यास करते जाए, जितना ये अभ्यास करते जाए, क्या होगा, शांति की शक्ति जमा हुई नहीं हुई, तो शांति की शक्ति ऐसे जमा होती है, जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे हमारी शांति की शक्ति जमा होती जाएगी, राइट, करनी है जमा नहीं करनी है, अब देखें इसका मंत्र क्या है शांति की शक्ति का, कि हम शांति की शक्ति कैसे जमा करें, इसका मंत्र क्या है, इसका मंत्र है मन मना भाव। कौन सा मंत्र है, मन मना भाव, और इसका यंत्र कौन सा है, ऐसी कौन सी मशीन है जिससे हम इसके बना सकते हैं, मन मना भाव को, मन मना भाव पैदा कैसे होगा, कैसे पैदा होगा, दिव्य बुद्धि, क्या चाहिए, जिसे इंग्लिश में बाबा ने कहा डिवाइन इनसाइट, एक बताया ना आजकल लोगों को क्या लॉस ऑफ इनसाइट हो रही है, वो समझते नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड चले गए, बियॉन्ड जाते जा रहे हैं, लॉस ऑफ इनसाइट, और अभी बाबा क्या दे रहा है हमको, डिवाइन इनसाइट, दिव्य बुद्धि दे रहा है, और दिव्य बुद्धि का आधार क्या है, सच्ची दिल साफ दिल, तो 3 बातें हुई, सच्ची दिल साफ दिल, फिर दिव्य बुद्धि, और तीसरा मन मना भाव। बाबा ने कहा अब समय ऐसा आ रहा है, आप सभी समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, जब चारों तरफ हाहाकार होगा, पांचों तत्व, अभी तो आपने कोविड में देखा, कोरोना के देखा ना, कोरोना महामारी में देखा क्या हालत थी, पहली वेव में क्या हालत थी, दूसरी वेव में क्या, तीसरी वेव अभी तो आ गई है, किंतु उसमें इतनी हालत खराब नहीं है अभी, पता नहीं और आगे बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी पता नहीं है, पर इसमें क्या हालत देखी है आपने, किस तरह से महामारी आई, कितना हमें घर में बंद रहना पड़ा, किस तरह से सब कुछ मिलना बंद हो गया, कहीं जाना आना बंद हो गया, है ना, कि तो अभी तो कुछ भी नहीं है, तो एक तो ट्रायल था, अभी कितने पांचों तत्व इकट्ठे होकर के आएंगे, कितनी सिविल वार होगी भारत में, विदेशों में कितने एटॉमिक वॉर होगी, कितनी जबरदस्त चीजें होने वाली हैं, और उस समय हमारी कैचिंग पावर, टचिंग पावर बहुत वंडरफुल होनी चाहिए। बाबा हमें टच करेगा, क्या टच करेगा, बच्चे ये हाल छोड़ के अभी वहां चलो, बस इतना ही टच करेगा, अगर आपने कैच कर लिया तो क्या होगा, तो आप ग्राउंड में चले गए, तो ये हाल थोड़ी देर में टूटने वाला है, क्रैश होने वाला है, बच गए, बाबा ने टच किया और आपने कैच नहीं किया, आपकी डिवाइन इनसाइट, दिव्य बुद्धि ठीक नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर चाहिए, मन एकदम क्लीन और क्लियर चाहिए, एकदम क्लीन, जरा भी इंगेज नहीं किसी चीज में भी, एकदम वाइस, 3 चीजें, बॉडीलेस, वाइसलेस और ईगोलेस, ये 3 संस्कार हमारे अंदर पड़ जाना चाहिए, संस्कार आदत बना लेनी पड़ेगी, जो बाबा का लास्ट का स्लोगन था ना, निराकारी निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, चलते फिरते उठते बैठते, बस मैं एक अशरीरी आत्मा हूं, मैं निराकारी आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, चलते फिरते उठते बैठते ये। और जब निराकारी बनकर के निराकारी परमात्मा के साथ, बाबा भी निराकारी है, बाबा मैं भी अशरीरी, शिव बाबा भी अशरीरी, जब अशरीरी बनकर अशरीरी बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे तो क्या होगा, निर्विकारी। फिर निर्विकारी रहने का भी संस्कार हो जाए, आदत पड़ जाए, जो ब्रह्मा बाबा ने 36 से लेकर 369 तक बनाया, निर्विकारी रहने की आदत पड़ जाए, तो पहला बॉडीलेस माना निराकारी, फिर वाइसलेस निर्विकारी, और फिर तीसरा जब निर्विकारी बन जाएंगे, पक्का निर्विकारी बन जाएंगे, तब हमसे बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होगी। अर्थात जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश क्या है, अंश और वंश क्या है, ये 10 संस्कार, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखने की आदत, बदलने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, अंश भी खत्म हो जाएगा, तब हमारे अंदर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होने लगेगी, तब हमारे पर लाइट का ताज आ जाएगा और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा, चलते फिरते उठते बैठते चारों तरफ हमारे पर ताज रहेगा, लाइट का ताज और विश्व कल्याण का जिम्मेवारी का ताज। अब इस स्थिति से सारे विश्व की जो भी आत्माएं बाबा को पुकार रही हैं, अपने देवी देवताओं को पुकार रही हैं, उनको ऑटोमेटिक आपके द्वारा शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशन पहुंचेंगे, शक्तियों के वाइब्रेशन पहुंचेंगे, सारे विश्व की बेहद की निस्वार्थ भाव से सेवा हो जाएगी और उससे आपके अंदर निरहंकारी स्थिति बनेगी, ठीक है ना। तो ये निरहंकारी माना ईगोलेस, तो आपका जो है बुद्धि भी क्लीन और क्लियर और मन भी क्लीन और क्लियर चाहिए, तब ये वाइसलेस जो कहते हैं ना, वाइसलेस की वायरलेस, तब साइंस के सब साधन खत्म हो जाएंगे। अभी तो साइंस के साधनों द्वारा आपने ऑनलाइन क्लासेस सुनी कोविड के टाइम, सुनी नहीं सुनी सबने, जहां भी थे आप कोविड, सब भाई बहनों ने मधुबन से क्लासेस कराई ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टॉपिक्स पे, भट्टियां भी, योग भट्टियां भी हुई, ऑनलाइन भट्टियां भी हुई, आपने वैसे भी किए घर में बैठे भी ऑनलाइन भट्टियां, भट्टियों के योग भट्टियों के प्रोग्राम चले। अभी तो ये भी खत्म होने वाला है ना, बिजली भी खत्म होने वाली है ना, लाइट जो साइंस का साधन क्या लाइट है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, साइंस के साधन सारे खत्म हो जाएंगे और उस समय साइलेंस पावर चाहिएगी, है ना। आज साइंस के साधन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मैच चल रहा अमरीका में है ना, साउथ अफ्रीका में, किसी और देश में, और हम यहां क्या देख रहे हैं, साइंस के साधन के द्वारा क्या देख रहे हैं, वो वहां से वो वाइब्रेशंस कहां देख रहे हैं हम लोग, टेलीविजन में है ना, आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहा है, ये साइलेंस का साधन, ये पावर ऑफ साइलेंस। अंत में हम जहां बैठे यहां पर हैं, मधुबन में बैठे, आप महाराष्ट्र में हैं, किसी जिले में, पुणे में बैठे हैं, मान लीजिए कहीं बैठे, बॉम्बे में बैठे, आप अकोला में बैठे, अपने घर में बैठे, और आप जो आपकी सोच है ना, जो आपको साक्षात्कार हो रहा है, जो आपकी स्थिति है उसका साक्षात्कार अमेरिका में बैठी हुई आत्मा को, जैसे टेलीविजन से मैच चल रहा है वहां, और टेलीविजन के द्वारा आपका वायर के द्वारा वो जो तार बिछे हुए हैं, जो उसके द्वारा सैटेलाइट के द्वारा जो आप यहां देख पा रहे हैं, ऐसे ही मैं यहां बैठे हुए, मेरा सैटेलाइट कौन है, शिव बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा कंबाइन, और मेरे द्वारा वो संकल्प कहां जाएगा, बाबा के पास, और बाबा से उस आत्मा के पास, शिव बाप दादा क्या है, सैटेलाइट, और उसके द्वारा वो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कहां जा रहा है, वो मैं इस देव हूं उसका है ना, और मेरे इस देव का साक्षात्कार सो कहां हो रहा है, मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अमेरिका में भूकंप आया है, दबे पड़ा है, दबा पड़ा जमीन मकान के नीचे, और वो उसको वहां उस दबे हुए मकान में उसको साक्षात्कार होगा, शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी, ये है पावर ऑफ साइलेंस। पर हमारी स्थिति कैसी चाहिए, 1 2 3 की स्थिति चाहिए, कौन सी चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 माना मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं, दूसरा अशरीरी बाप के साथ हूं, अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं, सर्व संबंधों से कंबाइंड, इसकी अनुभूति की होगी, इसको महसूस किया होगा, इसको जिया होगा, राइट, तो वो पावर उसको वहां बैठे बैठे महसूस होगी। जो बाबा कहता बच्चे आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती, दुखी दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती, क्यों सुनाई नहीं देती, क्यों सुनाई देती बताओ? जब आप बाथरूम में होते हो और टैप ऑन होती है, बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है अंदर कुछ? ऐसे जब आपके मन में शोर हो रहा था विचारों का, तो आपको दूसरों की बात सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती। जब आपका अंदर साइलेंस होता है, जब आपके मन में साइलेंस होता है, जब आपका मन में विचार नहीं, अपने विचार बिल्कुल नहीं चल रहे होते, बस मैं शरीर की आत्मा शरीर बाप से कंबाइंड हूं, और उसमें जब सूक्ष्म वतन में परम, सूक्ष्म वतन में आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शुद्ध संकल्प में रमण कर रहे होते हैं, बाप दादा के साथ एक एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, शिव बाबा जो सूक्ष्म वतन है वो महसूसता की स्थिति है, वहां वो रियलाइज कर रहे होते हैं बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों को, भिन्न भिन्न ज्ञान के बिंदुओं को रूहान कर रहे होते हैं, और परम धाम जो है अनुभूति की स्थिति है, अनुभूति की स्टेज है, वहां सिर्फ आप अनुभूति स्वीट साइलेंस की अनुभूति कर रहे होते हैं, संकल्पों से परे की दुनिया वहां अनुभूति अनुभव हो रहा होता है, वहां एक्सपीरियंस की स्टेज है वहां पर, और सूक्ष्म वतन क्या है रियलाइजेशन की स्टेज है, रियलाइजेशन की फेज है, राइट? तो सुप्रम ये स्वीट साइलेंस है, हम ब्राह्मणों के लिए स्वीट साइलेंस है जिनको ज्ञान है सत्य की समझ है, किंतु जो लोग यहां से मर के शरीर छोड़ के वैसे जाएंगे अज्ञानी लोग, उनके लिए क्या होगा? वहां डेड साइलेंस होगी। क्या होगी? डेड साइलेंस। वहां कोई ना शांति है ना कोई है, क्या कुछ वहां पर परम धाम में संकल्प है क्या? संकल्प ही नहीं है ना, उनको शांति की अनुभूति, ना प्रेम की, ना खुशी की, ना आनंद की, ना शक्ति, कुछ अनुभूति वहां नहीं होती है। किंतु हमें ज्ञान होने के कारण से हमें क्या होता है, संगम पर हमें स्वीट साइलेंस, अपने संपूर्ण पावन सत्वप्रधान अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की महसूसता होती है, अनुभूति होती है, महसूस नहीं, क्योंकि वो महसूसता की वो स्टेज ही नहीं है, अनुभव एक्सपीरियंस होता है। किंतु पहले एक्सपीरियंस तब हो सकता है जब हमने बाप के साथ सर्व संबंधों को सूक्ष्म वतन में अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा, रियलाइज किया होगा। इस संसार जो है, संसार ये जो पांच तत्वों का बना, ये जानने का फेज है, जानने की स्थिति है, जानने पहचानने की स्थिति है। यहां महसूस नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां रियलाइजेशन किसका होता है? माया का, रावण का, है ना? किंतु जब हम सूक्ष्म बन जाते हैं, शुद्ध संकल्पों से शुद्ध भावनाओं से बाप दादा के साथ सर्व संबंधों को महसूस कर रहे होते हैं, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, अपनी बुद्धि और मन को, सूक्ष्म शरीर क्या है? ये स्थूल शरीर है, और तीन सूक्ष्म शक्तियां बुद्धि मन और संस्कार आत्मा की हैं। तो बुद्धि हमारी जितनी शुद्ध होती जाती है, बुद्धि दिव्य, जो मैंने कहा दिव्य बुद्धि और मन मनाभव है ना, और उसके नीचे सच्ची दिल साफ दिल। जो सच्ची दिल साफ दिल है, सच्ची दिल साफ दिल का मतलब क्या है? जिस दिल में एक बाप के सिवाय कोई ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जिसने सर्व संबंध था, जिसने सर्व संबंध बाप के साथ महसूस किया हो। झूठी दिल कौन सी है, गंदी दिल कौन सी है, जिस दिल में कौन अब दुनिया में दिल कैसी है लोगों की? हमारी भी गंदी थी, कैसी थी? इस दिल में, इस चेतना में क्या भरा हुआ था? मैं देव हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, है ना, वो सब दिल में बसे हुए थे ना? दे भान, दे अभिमान, दे के संबंध संपर्क का भान, दे के पदार्थों का भान दिल में था, दे भान के स्वभाव काम क्रोध लोमो अहंकार दिल में थे, चेतना में थे, और दे भान के संस्कार आलस्य अलबेलापन, थोड़ी नींद कम की क्या होगा, सारा दिन संकल्प चलते जाएंगे ना, आज तो नींद आई नहीं, आज तो नींद करनी थी, नींद कम हो गई, आज क्या करें, कैसे करें, तो वही संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे ना। तो वो जो है, अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो है ये दिल में बसा पड़ा है, हमको अपने आप से बात कर करके, जान जान करके, मुरली का मनन चिंतन करते हुए, मुरली को बार बार रिवाइज करते हुए ना, गहराई से मुरली के एक एक बिंदु को महसूस करते हुए, जो बाबा ने आज कहा, इवन जो कल की मुरली, संडे की मुरली, बाबा ने क्या कहा, दुनिया की बातें याद ना आए, ये दिल में, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है, 16 न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, हर ब्रेन में मेमोरी बसी हुई, क्या बसी हुई है, मैं ये हूं, मैं, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माता जी का नाम, मेरा ये, मेरा भाई, मेरा ये, میرے ایسے کپڑے, میری یہ شرٹ کہاں گئی, یہ پینٹ کہاں گئی, یہ میرا یہ کہاں گیا, بیچ کہاں گیا, ہے نا, یہ بھی دل میں بسا ہوا ہے نا, یہ بھی دل میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, اس پہ داغ لگ گیا, یہ بھی دل میں چلا گیا ہے نا, میرے شرٹ پہ داغ لگ گیا ہے نا, یہ بھی دل میں چلا جاتا ہے نا. تو اتنا مطلب ہمارے اندر یہ دل میں, دل مانا چیتنا میں, چیتنا میں کانشیسنیس میں چلا گیا ہے. اب اس کو نکال کر کے میں کون ہوں, اس کو جتنا مرلی کا منن چنتن منتھن سمرن کرتے ہیں, گہرائی سے محسوس کرتے ہیں, ایک بابا کو, بابا سے سرو سمبندھ, ماتا پتا شکشک, اس کو محسوس کرو, ایک ایک سمبندھ کو محسوس کرو, ہے نا, ایک ایک سمبندھ کو جیو نا. تو جتنا ہم ہر سمبندھ کی, جتنے سمبندھ دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں, بابا نے ایک مرلی میں کہا تھا, بچے اس باپ سے سرو سمبندھ جو انوبھو نہیں کریں گے, سپوز آپ نے ماں کا سمبندھ کیا, پتا کا کیا, ٹیچر کا کیا, بندھو کا کیا, ستگرو کا بھی کر لیا, کنتو بندھو کا نہیں کیا, تو انت میں آپ کا بھائی آپ کو دکھائی دے گا اور وہ آپ کو فیل کر دے گا فائنل پیپر میں. آپ کو دوست کا انوبھو بابا سے آپ نے نہیں کیا, کسی آپ کو جو دوست بچپن کا دوست آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو پیپر میں فیل ہو جائے گا, مایا اسی روپ میں آئے گی, دوست کے روپ میں آئے گی. ساجن کا سمبندھ نہیں کیا آپ نے بابا سے انوبھو, تو ساجن کے روپ میں آئے گا آپ کو, بھلے آپ کمار کماری ہیں, آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, کہیں سوکشم اچھا تھی پہلے کی دبی ہوئی اچھا, وہ سامنے آ جائے گی, وہ بچپن کا دوست جس کو آپ لائک کرتے تھے وہ سامنے آ جائے گا اور آپ فیل ہو جاؤ گے. ڈاکٹر سرجن کو آپ نے دنیا بھی ڈاکٹر سرجن رکھا ہوا ہے, اس کو ہر سمے یاد کرتے ہو, بابا کو یاد نہیں کرتے ڈاکٹر سرجن کے روم میں, تو انت میں کیا ہوگا, وہی ڈاکٹر سرجن آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ فیل ہو جاؤ پیپر. بچے کا سمبندھ, بیٹا یا بیٹی کا سمبندھ آپ نے اس سے نہیں کیا, بھلے آپ کمار کماری ہیں, تو بھی آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ کے سامنے لاسٹ میں وہ آ جائے گا اور اس میں فیل ہو جاؤ. اس لیے بابا سے جو ہمیں پچھلے جنموں کا بھی حساب کتاب دیکھتے ہوئے, آتما کو دیکھتے ہوئے, ہر سمبندھ کی انوبھوتی بابا سے کرنی. اور دوسرا شریمت, سچی دل مانا جس کے دل میں شیو بابا اور شریمت, بس ذرا بھی منمت پرمت نہ ہو کسی بھی دیدھاری کی کہی ہوئی باتیں, منمت پرمت پہ کہی ہوئی باتیں, دنیاوی باتیں, سنیاس دھرم کی باتیں, تجنیش کی باتیں, ادھر کی باتیں, اس گرو کی باتیں, اس کتاب کی باتیں, کسی کی باتیں نہ ہو, ایک شریمت, شریمت مانا بابا کی مرلی کی باتیں چھوڑ کر کے, وہ ہے سچی دل. سچی دل مانا بابا, ایک بابا سے سر سمبندھ کی انوبھوتی, اور دوسرا صاف دل مانا شریمت, ذرا بھی منمت پرمت نہیں. شریمت میں اگر ہمیں 100 ml دودھ ہے, 1 ml اس میں زہر ملا دو, کیا بن گئی, زہر بن گیا. مطلب شریمت میں ایک پوائنٹ پہ آپ نے کیا ڈال دیا, منمت پرمت ڈال دی, تو کیا ہو گیا, زہر. اب وہ سچی دل صاف دل نہیں کہلائے, صاف دل نہیں کہلائے گی. آپ کا کسی آپ کے ساتھی ہیں, اس کے پرتی تھوڑی ارشا دویش ہے آپ کے من میں, تو سچی دل صاف دل نہیں کہلائے گی, رائٹ. کسی کے پرتی یہ اپنے من میں نمت بھاو ہے, میں بڑا ہوں, میں انچارج ہوں, سچی دل صاف دل نہیں کہلائے گی. میں سیوا دھاری ہوں, جتنا بڑا پد اتنا بڑا سیوا دھاری, جیسے برہما بابا کا دیکھا نا, دادیوں کا دیکھا نا, تو وہ استھتی ہماری ہونی چاہیے, سمجھ رہے. تو سچی دل صاف دل ہوگی, اس کے آدھار پہ ہمارا کیا بنے گا, اس کے آدھار پہ ہماری دیویہ بدھی بنے گی, ڈیوائن انسائٹ بنے گی, تیسری آنکھ ہماری کھل جائے گی. کیا کھل جائے گی, گیان کا تیسری آنکھ. ابھی ہم دو آنکھ سے دیکھتے ہیں, جیسے ہی بابا میرے اندر آ جائے گا چیتنا میں, دل میں, اور شریمت بابا کے دل میں آ جائے گی, میری تیسری آنکھ کھل جائے گی. ستیہ کو پرکھنے کی شکتی, اس کو وزڈم کہتے ہیں, وویک جاگرت ہو جائے گا, نرنے شکتی دیویہ ہو جائے گی. اب میں دیہ اور دیہ کی دنیا سے من بدھی کو سمیٹ کے بندی آتما بن کے اور ساتوں چیتنیہ آتمک ارجاؤں سے بھرپور بدھی, بدھی سوکشم شریر کا انجن ہے, اور من سارے شریر میں پھیلا ہوا ہے, من میں لائٹ بھر جائے گی. کیسی لائٹ, گیان کی لائٹ بھر جائے گی, پویترتا کی لائٹ بھر جائے گی, شانتی کی لائٹ, پریم سکھ آنند شکتیوں کی لائٹ بھر جائے گی, من منا بھاو جسے کہتے ہیں نا. تو یہ سوکشم شریر بن گیا, لائٹ کا شریر بن گیا. اور سنسکار دل میں جو ہوتا ہے, دل میں چیتنا میں بدھی, بدھی سے سنکلپ, بدھی سے سنکلپ اتپن ہوتے ہیں, چت, بدھی میں چت ہوتا ہے نا. تو میں نے بتایا پہلے ہے دل, اس کے بعد وویک وزڈم, اور وزڈم سے ہوتی نرنے شکتی, دیویہ بدھی جسے کہہ دیتے ہیں. اور پھر دیویہ جب ہماری نرنے شکتی دیویہ ہو جاتی ہے, تو وستار کو سار ملانے کی شکتی آ جاتی ہے. जो हमारी मन और बुद्धि देव और देह की दुनिया में फैली हुई थी उसको एक सेकंड में समेट लेते हैं और एक सेकंड में बिंदी आत्मा बन जाते हैं, फुल स्टॉप लगा के, पास को फुल स्टॉप लगा के बिंदी आत्मा बन के सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि मन और संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म मतलब माना बाप दादा की गोद, शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन मतलब शिव बाबा के गोद में बैठा हुआ है जैसे, और फिर शिव बाबा उसके अंदर आके बैठ गया तो क्या हो गया, बाप दादा हो गया, नहीं हो गया, तो ये है सूक्ष्म वतन। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, अपनी बुद्धि मन संस्कार को एकदम दिव्य बना दिया, शुद्ध बना दिया, क्लीन और क्लियर बना दिया और शिव बाबा की गोद में जाके बैठ गया, दिल तख्त में जाके बैठ गया। अब जब बाबा वहां गया, ब्रह्मा बाबा दिल, शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया, तो ये है सूक्ष्म वतन। इसलिए कहते फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा सपूत बच्चा बनो तो तुम भी वहां जाके बैठ जाओगे, है ना। तो बाप दादा गोद में पहुंच गए सूक्ष्म शरीर के साथ, बाबा का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा बाबा का, उसमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और आप उसके सूक्ष्म उसी गोद में। तो इसको बोलते हैं सार रूपी गोद, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद। जब सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद होगी तो उसकी सार रूपी गोद में जाके बैठ जाते हो और फिर बाबा से एक एक संबंध की महसूसता करेंगे, बाबा से रू रिहान करते हैं, मुरली के जो पॉइंट्स क्लियर नहीं तो बाबा से पूछते हैं, है ना। बाबा से अपने कोई अपने मन की, तन की, परिवार की कोई बात है, सूक्ष्म बात भी है तो आप बाबा से रू रिहान कर लेते हो। धंधे की भी कोई बात है सूक्ष्म तो बाबा से डायरेक्शन ले लेते हो सूक्ष्म वतन में, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से लेन देन होती है, रू रिहान होती है। और फिर वहां से क्या होता है, जब इससे क्या हुआ आपका, तो विस्तार को सार मिला, इसको बोलते हैं विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। जब सारी आपकी रूहियां पूरी होती है तो क्या होता है, आपको संकल्प रहता नहीं है, तो फिर वहां से भी मन बुद्धि को समेट, सूक्ष्म शरीर को भी समेट लेते हैं, बिंदी बन जाती, बिल्कुल अशरीरी आत्मा बन गई, परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड। अब करंट आने लगती है, करंट माना बैटरी चार्ज होने लगती है, बैटरी चार्ज माना अंदर सत्य की समझ आने लगती है, पवित्रता आने लगती है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद आने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है और उससे आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ऊपर है, परिवर्तन यहां होता है शरीर में। क्या परिवर्तन, आपके हार्मोन्स, शांति के हार्मोन, प्रेम के हार्मोन, खुशी के हार्मोन, आनंद के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकाफेलिन, सीरोटोनिन, ऐसे कई सारे केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन, वो केमिकल रिलीज होने लगते हैं, तो जिससे आपके अंदर बहुत हल्कापन आने लगता है, सारे शरीर के दर्द खत्म होने लगते हैं, कर्म भोग जो सूली के समान थे वो कांटा बनने लगते हैं, परिस्थितियां, आसपास की परिस्थितियां जो थी घर की, बाहर की, वायुमंडल की, वो आपको महसूस नहीं होती है, तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, सहन करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सहन इतना सहन कर सकते हो, बल्कि आपको शरीर पर इतना हल्कापन लगता है, दर्द खत्म, पैरों का दर्द खत्म, घुटनों का दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, हार्ट का दर्द खत्म, सांस नहीं आता, सांस आना शुरू, सिर का दर्द खत्म, है ना। अब कोई कुछ बोलता भी तो आपको सुनाई समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, लगता है ये मेरी महिमा कर रहा है, कोई मुंह बना रहा सामने से लगता है वो मेरी बड़ाई कर रहा है ना। जब यहाँ पर शाम को मेडिटेशन करते ना, अभी तो आप लोगों की भट्टी चल रही है, अभी तो शादियां नहीं चल रही, पहले डीजे सामने साथ में होटल है चौधरी होटल, एक यहाँ पर एक दूसरा होटल हिलक्रेस्ट होटल बना हुआ, तो वहां पे डीजे बजता है, डीजे समझते क्या होता है, बहुत जोर से गीत बजता है, म्यूजिक, ये भी दीवार भी कांपती है ना, और हम जब योग कर रहे होते तो हमें जरा भी महसूस नहीं होता कि वो डीजे बज रहा है, आवाज सुनाई देती है, हम खो जाते बाबा के साथ, है ना, सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में खोए होते हैं, तो हमें वो स्थिति हम डिस्टर्ब नहीं करती हमको, है ना। वही समय योग होने का होता है 6:30-7:30 और वही समय डीजे बज रहा होता है, नहीं महसूस होता, रियली में महसूस नहीं होता, ये है शांति की शक्ति। जब बाबा से आपका माइंड होते ना, तो शांति की शक्ति क्या काम करती है, बम भी बज, आखिर में बम बज रहे होंगे बहुत जोर जोर से आसपास, है ना, बमों की लड़ाइयां हो रही होंगी, पर हमको क्या होगा, हम बाबा के नशे में खोए होंगे, हम साक्षात्कार कर रहे होंगे, यहां लोग हाहाकार करेंगे बाहर वाले, और हमारे क्या होगा, अंदर से हम खुशियों के नगाड़े बजेंगे हमको, है ना, क्योंकि हमें लगा हम सत्युग में गए, हम तो अपने स्वर्ग में गए, और उनको क्या लगेगा, हम तो हाय हाय गए मरे, वो कहेंगे हाय मरे, हम क्या कहेंगे, हम स्वर्ग में गए, है ना। तो ये महसूसता, ये है शांति की शक्ति, कर्म भोग भी स्थापित, सहन शक्ति, समाने की शक्ति आ गई, और भी प्रॉब्लम को सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई, तो आपके अंदर ये परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो छह शक्तियां ना, आखिरी की छह शक्तियां, इससे आपका चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है, चित्त के अनुसार चेतन मन में चिंतन चलता है, चित्त के अनुसार जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो फिर चेतन मन में कौन सी फाइलें खुल जाएंगी? पिछले कल्प वाली संपूर्ण पावन सत्व प्रधान फाइलें खुल जाती है, संपूर्ण पिछले कल्प वाली संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरूप की फाइल अंदर है, देवता स्वरूप की फाइलें खुल जाती है, फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुल जाती है, बीज रूप स्थिति की फाइलें खुल जाती है। जब बाबा के साथ पिछले कल्प में परमधाम गए थे वो फाइलें खुल जाती है। तो आप मुरली सुनते हो ना, मुरली अंदर से महसूस होती है, हाँ मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, अंदर जा रही है बात। अब चिंतन चलता है जो बाबा ने कहा, अभी तक चिंतन क्या, आप देखो आप करके देखो, आज सुबह मुरली पढ़ी ना आपने, सुनी, चिंतन चल रहा है क्या मुरली का, बाबा ने आज क्या कहा था, आज के वरदान का चिंतन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, मुश्किल से 5% चिंतन चलता है। सारा दिन चेक करके देखना आप, 12 घंटे में कितनी देर चिंतन चला, मुश्किल से 5% चलेगा, ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि बुद्धि दिल में सत्य नहीं है, इससे चित्त अशांत चंचल और बेचैन है। तो वो वाली फाइलें खुली है, अशांत चंचल बेचैन, दुनिया वालों की बातें याद आती, माँ की बातें, बाप की बातें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो बातें याद आती, उनका चिंतन चलता है, उसके विचार चलते हैं। तो अभी जब आप दिल सच्चा साफ होगा तो आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी, आप हर बात को तीसरी आंख से देखोगे, निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाएगी, विस्तार को सार में, हमेशा देव के देखी दुनिया से मन बुद्धि समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम सूक्ष्म वतन बाधा की बुद्धि का अनुभव करते रहोगे, और समेटने की शक्ति लेके परम धाम से करंट आती रहेगी, और चयन होता रहेगा, समाना होता रहेगा, सामना होता रहेगा, सहयोग होता रहेगा, और सातों एनर्जी का बैलेंस होता रहेगा, और हीलिंग एनर्जी बन जाएगी, और ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत हो जाएगी, विक्रम विनाश होने लगेंगे, और क्या होगा, चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा। चिंतन कौन सा चलेगा? मुरली का चिंतन चलेगा, बाबा से एक एक संबंध का चिंतन चलेगा। जब कुछ प्रॉब्लम होगी बाबा आ जाओ, दोस्त चाहिए बाबा आ जाओ, भाई चाहिए बाबा आ जाओ, डॉक्टर चाहिए बाबा आ जाओ। अभी कौन आज याद आता है? भाई याद आता है, बंधु याद आता है, सखा याद आता है, डॉक्टर याद आता है, फिर डॉक्टर याद नहीं आएगा, वो याद आएगा, उसको यूज करेंगे, बाबा की मुरली पॉइंट पर याद आएगा, शक्ति तुरंत बुद्धि में आ जाएगी, शक्ति यूज करनी, अभी ये शक्ति यूज करनी है, अभी जैसे सहन करके समाना है, बोलना नहीं है, अंदर अंदर खत्म करना है इस तकलीफ को, राइट। तो अंदर दवाई, आखिर में दवाई होंगी क्या? थायराइड की दवाई मिलेगी क्या? डायबिटीज की गोली मिलेंगी क्या? ब्लड प्रेशर की गोली मिलेगी क्या? मिलेगी, क्या करोगे फिर? सिर दर्द होगा तो सिर दर्द की गोली मिलेगी क्या? कहां से ठीक करोगे? ये साइलेंस पावर काम आएगी, तो ये साइलेंस पावर हमें यूज करनी पड़ेगी, राइट। करेंगे कि नहीं करनी है? क्या लाओगे बाजार से दवाई लाओगे? और ऐसे आपकी जब चिंतन चलेगा, चिंतन एक विचार चला, इसको विचार कहते हैं, 10 बार वही विचार संबंध से याद करेंगे तो भावना बन जाएगी, भावना से वाइब्रेशन बनते हैं। जब मैं इस बाबा की मुरली का चिंतन करूंगा, बाबा को, बाबा आ जाओ ना, बाबा आ जाओ प्यार से कहूंगा ना, तो क्या होगा, मेरी बात बाबा तक पहुंची। बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुमको पदम गुणा याद करता हूं, प्यार से प्यार होता है, याद से याद पहुंचती, तो करंट आपकी मेरी क्या हद पदम गुणा, तो छत्र छाया बन जाएगा, तो बाबा की टचिंग होगी, मैं कैच कर लूंगा, बाबा जो भी कहेगा टच होगा, कैच हो जाएगा, कैच होके और मैं उसको फॉलो कर लूंगा, और मेरा बाबा से इतना प्यार बढ़ता जाएगा, इतना अनुभव हो जाएगा, इतनी महसूसता होती जाएगी, अनुभव होता जाएगा, सारा दिन मेरी वृत्ति में ना वृत्त बन जाएगा, सर्कल पूरा हो जाएगा, तो वृत्त बन गया ना, वृत्ति, रूहानी वृत्ति बन जाएगी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी मेरा बेटा भी आत्मा, मेरी बेटी भी आत्मा, ये भाई भी आत्मा, ये बहन भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि हो जाएगी, सब आत्माएं दिखाई देंगे, और रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, और फिर क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा अंदर, क्योंकि जैसे जैसा फील होगा ना, मेरे को भी रिकॉर्ड होगा, दूसरे वाले को भी रिकॉर्ड होगा, है ना। जैसे आप यहां आते हो रूहानी वृत्ति महसूस, रूहानी वायुमंडल लगता है ना, बाबा का घर कैसा लगता है मधुबन, अपना घर रूहानी वायुमंडल नहीं लगता है, यहाँ रूहानी वायुमंडल, सेंटर से भी ज्यादा रूहानी यहाँ लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ योग होता है, तपस्या होती है ना, रूहानियत होती है, हर आत्मा हम आपको क्या देखते हैं, आपस में भाई भाई देखते हैं ना, तो वो वृत्ति, वो वायुमंडल बनेगा अंदर, महसूस होगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हर सेल के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी शांति, प्यार, खुशी हर समय महसूस होती रहेगी, जैसे पानी का कुंड होता है ना, पानी की झील होती है, ठंडक अपने आप महसूस होती है, ऐसे ही ये आत्मा शांति का कुंड बन जाएगा, तो वो अंदर से सारा दिन शांत, मुझे भी फील होगी, आस पास वालों को भी फील होगी, और ये वाइब्रेशन कहां जाएंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं,
पूरे विश्व तक जाते हैं। बाबा के वाइब्रेशन मेरे को आएंगे, टच करके रिफ्लेक्ट होकर सारे विश्व में आत्मा को जाएंगे, तो ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती जाएगी। तो ये मेरे अंदर फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मेरी आस्थाएं बदल जाएंगी। पहले था ये चाहिए ये चाहिए, अभी क्या आस्था हो जाएगी, बाबा ही मेरा सब कुछ है, ये बिलीफ सिस्टम हो जाएगा। संस्कार स्मृतियां रिकॉर्ड हो जाएंगी, अब उस संस्कारों से मैं देखूंगा ना, क्या देखूंगा, दिखाई क्या देगा, सुनाई क्या देगा, बोलेंगे क्या। तो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माना अब मैं अंदर देखना शुरू करूंगा, अंदर अंदर अपने आत्मा को। तो पहले अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना, अंदर से अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता आती जाएगी। तो इस तरह साइलेंस पावर जमा करते करते क्या हो जाएगा, अंत में हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 1-2-3 वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 1-2-3 वाली है ना, 35-40 वाली नहीं, 35-36-37 वाली नहीं। तो इसको बोलते साइलेंस पावर। कम होते होते 35-36 से धीरे धीरे 30-28-29-30 17-18-19 और उसके बाद बस, फिर उसके बाद कितनी 8-9-10 फिर 4-5-6 और फिर 1-2-3। ये जितनी 1-2-3 जमा होती जाएगी फिर बाबा के साथ हम जाएंगे, एक एक बन जाएगी, फिर तो एक बाबा ही रह जाएगा, फिर एक बन करके बाबा के साथ वापस कर जाएंगे, राइट। ये साइलेंस पावर, क्योंकि हम एक बनेंगे तो बाबा के साथ जा सकते हैं। 0 बाबा, 1 ब्रह्मा बाबा और 1 हम, जब इसे कहते हैं बाप समान, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो हम ये साइलेंस पावर सारे विश्व में हर आत्मा को भी सहयोग देगी और हम बाबा के साथ साथी बन करके बाबा के साथ घर जाएंगे और बाबा के साथ कहां आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में, राजधानी में आएंगे। तो ये है पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति। ओम शांति। Ooh.